नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, आपका स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। 3 मैचों की श्रृंखला के अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 338 रन का लक्ष्य दिया। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 18 रन से हराया। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता में अर्जुन एरिगेसी ने जीत के साथ शुरुआत की और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 57वां संस्करण रविवार को पूरे देश में उत्साह के साथ आयोजित किया गया। तीन मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में इंदौर में न्यूजीलैंड के 338 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 34 ओवर में 6 विकेट पर 181 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 337 रन का विशाल स्कोर बनाया। मेहमान टीम के लिए डैरिल मिचेल ने 137 रन और ग्लेन फिलिप्स ने 106 रन की शतकीय पारी खेली। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा ने 3-3 विकेट लिए। 3 मैचों की यह श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में संजीव जी, सारा दारमोदार इसी मैच पर है या पूरी सीरीज का दारमोदार इस समय चेज मास्टर विराट कोहली के कंधों पर है?
बिल्कुल, कहें तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और विराट कोहली को अगर दूसरे एंड से कोई अच्छा साथ मिले, हर्षित राणा है बहुत धीमे खेल रहे हैं, हालांकि बड़े शॉट्स मारने के लिए हम उनको जानते हैं। उसके बाद तो बॉलर्स हैं जिनसे आप डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते कि वो कितनी देर रहेंगे और कितने रन बनाएंगे, लेकिन विराट कोहली जब तक हैं उम्मीद कर सकते हैं। ये वनडे वाला एक मैच खेलना होगा उनको और जिस तरह से वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं और रन बनाते हैं, आपने सही कहा, यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करने से भी थोड़े वो हिचकेंगे कि दूसरे एंड से विकेट ना गिरे, तो ज्यादा जिम्मेदारी उनको उठानी होगी। अगर भारत इसको जीतने में सफल रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसने कभी भी भारत को वनडे सीरीज में, जो द्विपक्षीय सीरीज होती है उसमें हराया नहीं है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो उसने तो इतिहास रचा ही था, अभी पिछले 2 साल पहले वो यहाँ आके और टेस्ट सीरीज कभी जीते नहीं थे और जीत के गए थे, तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि कोई चौंका ना दे। लेकिन फिलहाल जैसे सारे हमारे लिसनर्स हैं, सारे क्रिकेट प्रेमी हैं, देश के खेल प्रेमी हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं, तो मैं भी उसी तरह से उस उम्मीद में हूँ।
जी बिल्कुल, इस उम्मीद को कह सकते हैं कि 37 साल से न्यूजीलैंड ने भारत में कोई एक दिवसीय श्रृंखला नहीं जीती है, उसके बीच में आज विराट कोहली भारतीय उम्मीदों को लेकर के खड़े हुए हैं। इससे पहले भारत ने अंडर-19 विश्व कप 2026 के 7वें मुकाबले में कल बांग्लादेश पर डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से जीत दर्ज की। ये भारत की इस प्रतियोगिता में लगातार दूसरी जीत है और इसके साथ ही भारत अपने ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गया है।
भारत की पूरी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी की 72 और अभिज्ञान कुंडू के 80 रन की बदौलत 48 ओवर 4 गेंद में 238 रन बनाए। विपक्षी खेमे से अल-फहद ने 38 रन देकर 5 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम को 17वें ओवर में आई बारिश के बाद डकवर्थ लुईस नियम के अंतर्गत 29 ओवरों में 165 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में बांग्लादेशी टीम 29वें ओवर में 146 रन पर सिमट गई। तमीम ने 72 गेंदों में 51 रन की पारी खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। भारत की तरफ से विहान मल्होत्रा ने 4 ओवरों में 14 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि खिलन पटेल ने 2 विकेट निकाले। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तो भारतीय अंडर-19 टीम भी लगातार अपना जलवा बिखेर रही है। जिम्बाब्वे और नामीबिया में विश्व कप चल रहा है, जिस तरह की उम्मीद थी वैभव सूर्यवंशी से ऐसी पारी कल देखने को मिली।
हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क था क्योंकि वो 200 के स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज हैं, हालांकि उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दिया, लेकिन जो परिस्थितियां थी बहुत बड़ा स्कोर नहीं बन सका। उन हालात में देखें तो उनका जो ये रन है वो भारत के लिए जीत में उसका योगदान रहा, क्योंकि ये डकवर्थ लुईस का नहीं अगर वहां पे अप्लाई हुआ होता तो उनकी स्थिति एक समय ठीक ठाक थी, क्योंकि बॉलिंग में उन्होंने अच्छा किया था और बैटिंग में भी वो अच्छा कर रहे थे। बहरहाल भारत इस जीत के बाद जो चार टीमें हैं अपने ग्रुप बी में टॉप पर है। भारतीय टीम दो मैच खेले हैं, यूएसए और बांग्लादेश दोनों से जीत हासिल की है। अब न्यूजीलैंड से मुकाबला है और मुझे लगता है कि भारतीय टीम को उसको भी जीतना चाहिए। तो कुल मिला के ग्रुप से आगे बढ़ने के लिए भारत के लिए, भारत के पास पहले से ही ऐसा था, हम मान के चल रहे थे कि वो प्लेयर हैं जो
आगे लेके
आगे लेकर जाएंगे, यहां कोई चुनौती खास नहीं थी। अब अगले दौर में भारत को ज्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल न्यूजीलैंड को भी भारत को अच्छे अंतर से हराना पड़ेगा और फिर वो भारतीय टीम ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे के राउंड में जाएगी।
जी बिल्कुल, भारतीय टीम को उम्मीदें होंगी अपने युवा खिलाड़ियों से। और अब रुक करते हैं महिला क्रिकेट का, जहां महिला प्रीमियर लीग में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही आरसीबी की टीम जीत का चौका लगाते हुए अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है।
नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में कल एक बार फिर आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना का बल्ला दिल्ली के गेंदबाजों पर जमकर गरजा। पहले बल्लेबाजी करने उतरे दिल्ली कैपिटल्स 166 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा ने 41 गेंदों में 62 रन की पारी खेली। आरसीबी के लिए लॉरेन बेल और साइली सतघरे ने 3-3 विकेट हासिल किए। दिल्ली के 167 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने 10 गेंद शेष रहते ही 2 विकेट पर 169 रन बनाकर हासिल कर लिया। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद टीम के लिए कप्तान स्मृति मंधाना ने जॉर्जिया वोल के साथ दूसरे विकेट के लिए 91 गेंदों में 142 रन की मैच जिताऊ साझेदारी की। मंधाना 61 गेंदों में 96 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जबकि जॉर्जिया ने 42 गेंदों में 54 रन की नाबाद पारी खेली। WPL का दूसरा चरण कल से वडोदरा के BCA स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले के साथ शुरू होगा। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
तो वडोदरा का स्टेडियम तैयार है WPL के रोमांच को और बढ़ता हुआ देखने के लिए। और अब रुक करते हैं शतरंज का, जहां नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर शतरंज प्रतियोगिता में अर्जुन एरिगेसी ने भारत के ही आर प्रज्ञानानंदा को हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने पहले दौर में उज्बेकिस्तान के विश्व कप विजेता जवोखिर सिंदारोव के साथ कड़े मुकाबले में ड्रॉ की बाजी खेली। एक अन्य भारतीय खिलाड़ी अरविंद चितंद्रम ने भी अब जर्मनी के मैथियास ब्लूबॉम के साथ ड्रॉ के साथ अपनी शुरुआत की। Now move towards Mumbai, where the 21st edition of the Tata Mumbai Marathon concluded at historical Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus today. Ethiopia runner Tadu Apte Deme and Yeshi Kalayu Chevkole emerged as the notable winners at the World Athletics Global Level event.
Ethiopians Tadu Abate Deme and Yeshi Kalayu Chekole registered significant victories in men's and women's categories respectively at the 21st edition of the Tata Mumbai International Marathon, a World Athletics Gold Label Road Race today. Deme overcame a stiff challenge from Kenyan Leonard Langed and last year's runner-up Meravi Keshete of Eritrea to claim the men's crown. Langed finished runner-up while Keshete came in third. Amongst the Indian runners, Karthik Karkera stood first, upsetting the defending champion Anish Thapa, who was pushed to second place. Pradeep Chaudhary finished third. In the women's marathon, it was a clean sweep by Ethiopia, who claimed the first 9 places in the race. Sanjeevani Jadhav was the fastest among Indians and stood 10th overall, followed by teammates Nirmaben Thakur and Sonam in 11th and 12th positions respectively. For SportsCan, this is S. Kishore from Mumbai.
तो मुंबई की जनता आज भरपूर दौड़ी, और हम श्रोताओं को ये आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि कितनी बड़ी ये मैराथन की दौड़ है और इसका कितना महत्व होता है ग्लोबल इवेंट्स के तौर पर।
देखिए, ये इसमें आपकी रिपोर्ट भी था कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड रेस है, सबको एक वो मिला हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें भारत के जो एथलीट होते हैं उनको जो सबसे अच्छे जो इथोपियन हैं, केनियन हैं, इन देशों के जो रनर होते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं, वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, उनके साथ दौड़ने का मौका मिलता है। ऐसे तो एलीट वर्ग जो होता है उसमें जो जो टॉप टू जो है मेंस और विमेंस में दोनों भारतीय जो आए हैं वो टॉप 10 में हैं, जो फर्स्ट आए हैं, तो इससे ये साबित होता है। और समय भी अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा अंतर तो दिखता है, लेकिन टॉप 10 में आना अपने आप में उनके बीच में बड़ी उपलब्धि है। और जो मुझे पता लगा कि जो मैं देख रहा था कि ये जो दोनों भारत के संजीवनी और कार्तिक हैं, इन्होंने जो पहला स्थान हासिल किया है। ये दोनों फुल मैराथन में पहली बार हिस्सा ले रहे थे, वहां हाफ मैराथन भी में हिस्सा लेते हैं लोग, लेकिन ये फुल मैराथन में पहली बार हिस्सा लेते हुए चैंपियन बने हैं और बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरे स्थान पे महिला वर्ग में रही वो हैट्रिक बनाने के लिए उतरी थी, क्योंकि पिछले दो साल की वो चैंपियन रही थी, इस बार हालांकि वो नहीं बना सकी क्योंकि संजीवनी ने ये रेस जीत ली।
जी बिल्कुल, भारत में एक अच्छे और नए कल्चर को जन्म देती हुई इस प्रकार की स्पर्धाएं। दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में 19 से 25 फरवरी तक नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे, इसमें देश के शीर्ष राइफल और पिस्टल शूटर शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
ट्रायल्स के पहले दिन दो T1 प्रोन फाइनल और पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल T1 क्वालिफिकेशन होगा, जिसमें विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता अनीश भानवाला सहित कई दिग्गज प्रतियोगी शामिल हैं। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा, ओलंपिक्स पदक विजेता मनु भाकर और उनके साथ ही स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह शामिल होंगे। पिछले साल की सिंगल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता ईशा सिंह भी मनु भाकर के साथ महिलाओं के दोनों पिस्टल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रुद्रांश बाला साहेब पाटिल पुरुषों के दोनों राइफल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। इन सभी के साथ विश्व के नंबर 2 और विश्व कप फाइनल की विजेता सुरुचि फोगाट एयर पिस्टल इवेंट ट्रायल्स का मुख्य आकर्षण रहेंगी। ये तैयारी इस साल एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो इसी सवाल से शुरू करते हैं कि इस साल विश्व चैंपियनशिप भी होनी है और एशियन गेम्स भी हैं। जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय निशानेबाजों ने पिछले साल दोहराया है, इस टूर्नामेंट से कितनी उम्मीदें होंगी? हालांकि घरेलू टूर्नामेंट है, लेकिन कितना बड़ा मंच होगा इन खिलाड़ियों के लिए? नेशनल
ट्रायल्स है, मतलब सेलेक्ट होंगे। अगर भारत में ही एक एशियन चैंपियनशिप भारत मेजबानी करने वाला अगले महीने, और जैसे शूटिंग में साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है और उसके अलावा एशियन गेम्स भी हैं, तो ओवरऑल यहाँ से एक कहें तो सीजन की शुरुआत होगी। और चूंकि दिल्ली में है और तमाम जो भारत के टॉप शूटर्स हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को चैलेंज करने वाली प्रतियोगिता होती है। जो बेहतर होता है वो क्वालिफाई करता है, वही फिर भारत को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है भारत का।
जी बिल्कुल, ऐसे में खिलाड़ियों के पास भी एक बहुत बड़ा मंच होगा अपनी प्रतिभा को साबित करने का। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 57वां संस्करण आज पूरे देश में उत्साह के साथ आयोजित किया गया, सुनते हैं एक रिपोर्ट।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात के राजकोट के पास गोंडल से इस पहल का नेतृत्व किया। वहीं केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जे किशन रेड्डी ने हैदराबाद में इसकी अगुवाई की। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग सभी आयु वर्गों के लिए एक आदर्श व्यायाम है, जो न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है बल्कि कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करती है। हैदराबाद में गाची बोवली स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बैडमिंटन के दिग्गज और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता पुलेला गोपीचंद, अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज ईशा सिंह और पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता दीप्ति जीवन जी मौजूद रही। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि स्वस्थ भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब लोग अपने दैनिक जीवन में नियमित मूवमेंट और संतुलित आहार को अपनाएंगे। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
जो खेलेगा वही खेलेगा, क्या कहना चाहेंगे संजीव जी इस पहल?
हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक अच्छी पहल है और जैसा उन्होंने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करती है इस तरह की रेस, इस तरह की जो साइकिलिंग जिसको कहें, ये कोई रेस नहीं है बट आप के स्वास्थ्य की रेस कह सकते हैं। अपने को हेल्दी ज्यादा बनाने के लिए, जो एनवायरमेंट है उसको और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है।
जी बिल्कुल, और अंत में चलते चलते आपको एक बार फिर मैच का हाल बता देते हैं। भारत ने 38वें ओवर में 6 विकेट पर 212 रन बना लिए हैं और 122 रन की दरकार है। और श्रोताओं, इसी के साथ हम लोगों को बहुत बहुत इजाजत दीजिए और स्पोर्ट्स कैन का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।